अनुपमा जी के कहने पर आरवी उनके कमरे में आई, फिर उनके अलमारी से उनका पर्स निकालकर उसमें पैसे रखने के बाद जैसे ही पर्स रखा, उसके हाथ से वहां साइड में रखी फोटो नीचे जा गिरी। आरवी सकते में आ गई। उसने झट से उस फोटो को उठाया। गनीमत थी कि मैट के ऊपर गिरने की वजह से कांच नहीं टूटा था। आरवी जैसे ही उसे वापस अंदर रखने लगी, उसकी निगाहें उस फोटो पर पड़ी और उसके आगे बढ़ते हाथ रुक गए। उसकी नज़र उस फोटो में दिख रही औरत और उस बच्ची पर अटक गई। वो एकटक उस तस्वीर को देखने लगी। आरवी को यहाँ आए हुए आधा घंटा बीत गया था, पर अभी तक वो वापस ऊपर नहीं गई। अनुपमा जी को ये बात कुछ अजीब लगी। वो कुछ देर इंतजार करने के बाद कमरे से बाहर निकल गई। उन्होंने अपने कमरे में कदम रखा तो अब भी आरवी अलमारी के पास ही खड़ी थी। अनुपमा जी ने अब अंदर आते हुए कहा, आप इतनी देर से पैसे ही रख रही हैं? आरवी जो अब भी एकटक उस फोटो को देख रही थी, उसके कानों में अनुपमा जी की आवाज पड़ी, तब जाकर उसकी पलकें हल्की सी हिली। उसने पलटकर देखा तो अनुपमा जी अब उसके पास पहुंच चुकी थीं। आरवी ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर वापस उस तस्वीर को देखते हुए बोली, माँ ये आंटी कौन है? मैं इनके साथ क्या कर रही हूँ? मैंने तो उन्हें कभी भी नहीं देखा, फिर आपने उनकी तस्वीर को इतना संभाल कर क्यों रखा है? और देखिए ना, मेरा चेहरा उनसे कितना मिलता है। आरवी ने कन्फ्यूज निगाहों से उनको देखते हुए सवाल किया। पहले तो अनुपमा जी उसका सवाल सुनकर चौंक गईं, पर जैसे ही उन्होंने उसके हाथ में पकड़ी तस्वीर को देखा, उनकी मुस्कान तो पहले ही गायब हो चुकी थी, साथ ही उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया। आरवी अब भी आंखों में ढेरों सवाल लिए उन्हें देख रही थी। जब अनुपमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो आरवी उनके पास चली आई और वो फोटो उन्हें दिखाते हुए बोली, माँ बताइए ना ये आंटी कौन है? आपने तो मुझे पहले कभी उनकी फोटो नहीं दिखाई। मैं उनके पास कितनी खुश हूँ। क्या मैं उन्हें जानती हूँ? मेरा चेहरा उनसे इतना मिलता क्यों है? बताइए ना माँ, कौन है ये आंटी? ये आंटी नहीं बेटा, आपकी माँ है। अनुपमा जी ने एकाएक जो कहा उसे सुनकर आरवी का पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम लड़खड़ा गए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। आरवी ने अविश्वास भरी निगाहों से उन्हें देखा। अनुपमा जी ने उसके हाथ से उस तस्वीर को लेकर उसको बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गई। उन्होंने उसके हाथों को थामते हुए कहा, हम सच कह रहे हैं बेटा, आपने हमसे पूछा कि आपका चेहरा उनसे इतना क्यों मिलता है। आप उन्हीं के परछाई हैं बेटा। हमने आपको पाला जरूर है, पर आपको जन्म हमने नहीं, उन्होंने दिया है। हम जानते हैं आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि आपको ये सच्चाई बताएंगे, पर शायद महादेव की यही इच्छा है। तभी सालों से हम जिस हकीकत को छुपाते आए हैं, आज वो यूं खुद ही आपके सामने आ गया। अनुपमा जी पल भर रुकी और गंभीरता से बोली, ये सच है बेटा। हम आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहते थे, पर आपकी माँ की यही इच्छा थी। जब आप 3 साल की थीं, तब हमें आपकी माँ आधी रात के वक्त सड़क पर मिली थी। उनका रो रो कर बुरा हाल था, उनकी हालत बहुत खराब थी, तो हम और आपके पापा उन्हें घर ले आए। हमने डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनका दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आपके जन्मदाता पिता का दिए धोखे से वो पूरी तरह टूट गई थीं। आपके और उनके यहाँ आने के बाद 1 महीना भी नहीं जी सकी वो। जाने से पहले उन्होंने हमसे और आपके पापा से वादा लिया था कि हम आपके बाप की परछाई भी आप पर नहीं पड़ने देंगे। उनके दिए वादे को निभाने के लिए हमने आपका नाम बदल दिया और आपको अपनी बेटी बनाकर पालने लगे। भले ही हमने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आपकी माँ करती थी। आपकी माँ हमारी जिंदगी में फरिश्ते की तरह आई थी और अपनी नन्ही परी को हमारी खाली झोली में देकर चली गई। आपने हमारी सूनी गोद को भर दिया। हम उनके एहसानमंद हैं। आप हमारी बेटी हैं। बस हमारा आपसे खून का रिश्ता नहीं है। आपको वो याद नहीं क्योंकि तब आप बहुत छोटी थीं। बस यही सच्चाई है। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा कि आपको उन्होंने जन्म दिया है तो पाला हमने है। हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारे प्यार में कहीं कोई खुदगर्जी नहीं थी। आरवी एकदम सुनसी बैठी हुई थी। आज उसके बारे में जो सच्चाई उसको पता चली थी, उसको स्वीकार करना इतना भी आसान नहीं था। सच्चाई ने उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। जिन्हें वो होश संभालने से पहले से अपनी माँ बाप मानती आ रही थी, आज उसको पता चला कि उसका तो उनसे कोई रिश्ता था ही नहीं। वो उसके जन्मदाता नहीं थे, उन्होंने बस उसे पाला था, और जिन्होंने उसे इस दुनिया को दिखाया उनके बारे में वो अब तक कुछ जानती ही नहीं थी। माँ बाप का क्या कहना जब उसकी अपनी पहचान आज झूठी साबित हो चुकी थी। ये नाम वो नाम था ही नहीं जो उसके माँ बाप ने रखा था। इतना ही नहीं, उसके पिता ने उसके माँ को धोखा दिया था और उसकी माँ अंधेरी रात में उसे अपनी गोद में अकेले भटक रही थी। अपने पति का दिया धोखा वो ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त न कर सकी और अपनी 3 साल की बेटी को किसी और के हवाले करके इस दुनिया से चली गई। वो बेटी इतनी बड़ी हो गई, पर आज तक उसको ये तक पता नहीं था कि जिसको आज तक वो अपनी माँ मानती और कहती आ रही है, वो उसकी माँ नहीं है। उन्होंने उसको जन्म नहीं दिया, और जिसने उसको असहनीय दर्द सहकर ये जिंदगी दी, उनके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। ये बातें कहने में जितनी आसान थी, उन्हें सुनना और स्वीकार करना उतना ही कठिन था। उसकी सारी दुनिया एक पल में झूठ में तब्दील हो गई थी। आरवी इस सच्चाई को सुनकर सदमे में चली गई थी। वो सुनसी बैठी एकटक अपने बगल में रखी अपनी और अपनी माँ की फोटो को देख रही थी। आंखें आंसुओं से लबालब भरे हुए थे और चेहरा दर्द और तड़प से सजा हुआ था। अनुपमा जी की आंखें भी भर आई थीं और चेहरे पर डर पसरा हुआ था। डर अपनी बेटी को खोने का, डर कि कहीं ये सच्चाई आरवी को उनसे दूर ना कर दे, डर कि कहीं वो उन्हें गलत ना समझ ले, डर कि कहीं वो ये ना कह दे कि अब उसका उनसे कोई रिश्ता नहीं, डर कि कहीं वो उन्हें माँ मानने से इनकार ना कर दे क्योंकि उन्होंने उसे जन्म नहीं दिया है। डर अपने जीने की एकलौती वजह को खोने का। आरवी की खामोशी उन्हें डरा रही थी। उनके दिल में जो भय समा गया था उसको सही साबित कर रही थी। कुछ देर वो उम्मीद भरी निगाहों से आरवी को देखती रहीं, पर जब आरवी ने उनके तरफ निगाहें तक नहीं घुमाई, एक टक अपनी माँ की तस्वीर को देखती रहीं, तो अनुपमा जी का दिल टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। उन्होंने अपने दिल को मजबूत करते और अपने दर्द को अपने सीने में जब्त करते हुए आगे कहना शुरू किया। टू बी कंटिन्यूड।